मेरा अहमद का नॉवल आबे हयात, कैसेट नंबर 19। गांव से इस्लामाबाद वापसी पर सालार अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करता रहा और चुन्नी बराबर वाली सीट पर बैठी दरवाजे की खिड़की से चिपकी बेहद खामोशी और इत्मीनान से पूरा रास्ता बाहर देखती रही। सफर के दौरान सालार इस बच्ची की रिहाइश के लिए मुनासिब तरीन जगह के बारे में सोचता रहा था। उस वक्त उसने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा था कि वो इसे खुद पालेगा। वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, और अगर सोच भी लेता तो भी ये काम इमामा से पूछे बगैर नहीं कर सकता था। जो भी मुमकिन बातें चुन्नी के लिए उसके जहन में आ रही थी वो खुद ही उन्हें मुस्तरद कर रहा था। इस्लामाबाद पहुंचते ही घर के गैराज में उसके बच्चों ने भागते हुए उसका इस्तकबाल किया और गाड़ी के अंदर चुन्नी को सबसे पहले 3.5 साल हुमैन ने देखा और उसकी आंखें हमेशा की तरह गोल हो गईं, यूं जैसे उसे जंगल का कोई जानवर देख लिया हो। इससे पहले कि हुमैन कोई हरकत करता, सालार गाड़ी से निकलकर दूसरी तरफ आया। उसने हुमैन को हटाकर गाड़ी का दरवाजा खोला और चुन्नी को बाहर निकाला। चुन्नी से आने वाले बदबू के भपके सबसे पहले हुमैन ने ही महसूस किए। उसने बेख्तियार अपनी नाक पे हाथ रखते हुए बाप से कहा,
ओह माय गॉश, शी इज सो स्मेली एंड डर्टी एंड अगली।
हुमैन,
ओह बट देन इट्स ओके, मे बी शी लाइक्स टू लिव लाइक दिस। आई मीन सम पीपल लाइक टू बी डिफरेंट। आई लाइक हर हेयर स्टाइल, शी इज कूल।
हुमैन ने हमेशा की तरह बाप की फिटकार के बाद सेकंड्स में अपना बयान तब्दील किया और अपनी बात के आखिर में चुन्नी को सताईशी नजरों से देखते हुए बाप से कहा,
बाबा आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैव हर हेयर स्टाइल।
उसका ये सारा तबसरा कि ओ माई गॉड, ये कितनी बदबूदार, गंदी, बदसूरत है, और बाप के डांटने के बाद फौरन बयान बदलना कि हाँ ठीक है, शायद इसे इसी तरह रहना पसंद हो, मेरा मतलब है कुछ लोग मुख्तलिफ होते हैं, हाँ बल्कि मुझे इसका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा है, बहुत कूल है, और क्या अब मैं भी इसकी तरह हेयर स्टाइल बना लूं। उसकी जबान की कैंची से अदा होने वाले सारे बयान को सालार ने नजरअंदाज किया। वो एक छोटे साइज का खामोश ना होने वाला जिन था जिस घर के अफराद के इर्द गिर्द हर वक्त मंडलाता रहता, और उसके सवालात, खत्म ना होने वाले सवालात ने इमामा और सालार की आइडियल वालदेन बनने की हर ख्वाहिश, खूबी और मालूमात को खत्म कर दिया था। अब हुमैन की तारीफों का एक नया सिलसिला जारी हो गया। वो अपने बाप को यह जताकर खुश करना चाहता था कि उसे वो बच्ची अच्छी लग रही थी।
आई थिंक शी इज लाइक गोल्डी लॉक जैसी लग रही है ये।
जिब्रील ने एकदम उसे टोक दिया,
ये गोल्डी लॉक नहीं है, गंदी है। उसने कई हफ्तों से अपने बाल नहीं शैंपू किए, बल्कि महीनों से, इसलिए उसके बाल ऐसे गोल्डन ब्राउन से हैं। ऑलराइट।
तड़ाक से दिए गए इस जवाब पे जिब्राइल तो बेख्तियार पछताया, क्योंकि उसने एक बला अपने पीछे लगा ली थी।
अगर मैं कई महीनों तक बाल नहीं वॉश करूं, मेरे बाल भी ऐसे होंगे। मेरा मतलब है गोल्डन ब्राउन, एश ग्रे, मस्टर्ड येलो। नहीं, ओके, मैं बाल डाई कर लूं।
जिब्राइल ने इस बारे से मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। वो नहीं चाहता था कि बालों के बाद चुन्नी जैसे नाखूनों को भी अपनाने के बारे में सोचना शुरू कर दे। इमामा ने सालार को इस बच्ची को उठाए देखा। वो तैयबा के साथ बैठी इस वक्त चाय पी रही थी। वो चाय पीना ही भूल गई।
ये कौन है?
बाद में बताऊंगा, तुम इसे नहला के कपड़े बदलो और प्लीज डिटॉल वगैरह डाल के इसको अच्छी तरह साफ करो, मैं इसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहता हूं। सालार ने उसे धीमे अंदाज में इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा। इमामा कुछ उलझी, लेकिन वो उसे लेकर चली गई। उसको नहलाने की कोशिश के आगाज में उसे पता चल गया कि इस बच्ची के बालों को काटे बगैर इसको नहलाया नहीं जा सकता। उसके सर में बड़े बड़े फोड़े थे और इन फोड़ों से रिसने वाली पीप ने उसके बालों की लटों को आपस में इस तरह जोड़ दिया था कि अब उनका खुलना मुमकिन नहीं रहा था। उसने शेविंग किट में पड़ी कैंची से चुन्नी के सारे बाल जड़ों तक काट दिए। वो इसका सर गंजा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो फोड़ों से भरा हुआ था। इमामा को इस बच्ची को नहलाते हुए उस पर बहुत रहम और तरस आया और बेहद हैरत भी हुई। चुन्नी बिल्कुल चुपचाप थी। आम बच्चों की तरह उसने रोना धोना नहीं मचाया, ना अपने बाल कटने पे, ना इन फिंसियों और फोड़ों पर हाथ लगने पर किसी तकलीफ का इजहार किया। उसने गर्म पानी के अंदर डिटोल डालकर अच्छी तरह से मुमकिना हद तक उसे बिल्कुल साफ किया। बेडरूम में जिब्रील और अनाया बाथरूम में जाकर इस बच्ची की सफाई सुथराई बजाते खुद देखने से हुमैन को रोकने की कोशिशों में मसरूफ थे और उन्हें इस काम पर इमामा तायिनात करके गई थी। और बिलाखिर जब चुन्नी को बिल्कुल क्रू कट में नहलाकर हुमैन ही का एक जोड़ा पहनाए बाहर लाई तो उसे देखकर सबसे पहली चीख भी हुमैन ही ने मारी,
ओह माय गॉश मामी यू मेड हर अग्लियर हॉरिबल यू हैव डिस्ट्रॉयड माय मोस्ट फेवरेट शर्ट।
उसको तो ये दुख था कि वो मजीद खौफनाक और बदसूरत तो हो गई पर मां ने सबसे प्यारी शर्ट भी उसे पहना दी। एक तो उसको गम था चुन्नी के बालों का, दूसरे अपनी शर्ट।
मम्मी शी वॉज अ गर्ल यू मेड हर अ बॉय गॉड विल नेवर फॉरगिव यू फॉर दिस।
इमामा को इसकी बात पर हंसी आई, सालार ठीक कहता था, वो अजीबोगरीब बला था। और चुन्नी इस सारी गुफ्तगू के दौरान खामोशी से अपने इस नए खानदान को देख रही थी। वो इस घर में हमेशा के लिए रहने आई थी लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि वो एक मेहमान नहीं थी। इमामा ने अपने बेड पर सालार और अपने दरमियान पुरसकून गहरी नींद में खर्राटे लेती चुन्नी को देखते हुए सालार से पूछा, अब इसका क्या करोगे? बच्ची उनसे बेखबर बेनियाज थी। जिंदगी में पहली बार किसी ने मोहब्बत और शफकत के साथ उसका पेट भर जाने तक उसे खाना खिलाया था। सालार ने अभी कुछ देर पहले ही इमामा को चुन्नी और उसके बाप और खानदान के हवाले से पेश आने वाले तमाम हालात और वाकयात को अपने एहसास जुर्म के साथ आगाह किया था और चुन्नी के लिए इमामा की हमदर्दी और तर्स में बेपनाह इजाफा कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अहम तरीन सवाल वही था जो इमामा ने पूछा,
मैं इसे किसी ऑर्फनेज या वेलफेयर होम में दाखिल करवाने के लिए लेके आया हूं। जो कुछ इसके साथ हुआ है मुझ पर इतनी जिम्मेदारी तो आती है कि मैं इसकी जिंदगी खराब होने ना दूं। वहां रहकर इसकी जिंदगी बिल्कुल तबाह हो जानी थी जहां पे थी।
तुम एहसास जुर्म का शिकार हो रहे हो?
जो कुछ इसके बाप ने अपने खानदान के साथ किया इसमें मैं भी कसूरवार हूं। थोड़ा सा ज्यादा कंसर्न दिखा देता तो शायद ये सब ना होता जो हो गया।
तुम इसे अपने पास रखकर किसी यतीम खाने में दाखिल नहीं करवा सकते, खासतौर पर इस सूरत हाल में जब इसके रिश्तेदार मौजूद हैं और कोर्ट ने इन्हें इसकी गार्जियनशिप भी दी है। वो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।
मुझे कोई परवाह नहीं, इसका भी कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। फिलहाल मैं अपनी लीगल टीम से कहा है कि वो इसके बारे में मुझे एडवाइस करें। कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है इस बच्ची के लिए, गार्जियनशिप बदली जा सकती है, कोई बेहतर रिश्तेदार ढूंढा जा सकता है या फिर किसी वेलफेयर होम को इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है।
इस सारी गुफ्तगू के दौरान सालार सिकंदर ने एक लम्हे के लिए भी इस बच्ची को गोद लेने के ऑप्शन पर सोचा नहीं था। वो सिर्फ इस बच्ची की बेहतरीन निगहदाश्त चाहता था और उसके लिए रुपया खर्च करने पर तैयार था। और उसका ख्याल था कि वो पाकिस्तान में कयाम के दौरान ही चुन्नी के लिए कोई बेहतर जगह तलाश करने में कामयाब हो जाएगा। ये ख्याल कि चुन्नी को एडॉप्ट कर लिया जाए पहली बार इस घर में हुमैन को आया था, जो उस दिन इमामा से चुन्नी का नाम पूछने की जद्दोजहद कर रहा था।
अरे मुझे याद ही नहीं रहा ना, तुम्हारे बाबा से मैं इसका नाम पूछ ही नहीं सकी।
चुन्नी इस वक्त इनाया के थमाए हुए खिलौनों के साथ खेलने में मसरूफ थी। उसके सर और जिस्म पर मौजूद एलर्जी पर अब वो क्रीम लगी हुई थी जो इमामा थोड़ी देर पहले उसे डॉक्टर को दिखाकर लेकर आई थी।
ओके, मैं इसका नाम आंकू?
नहीं नहीं, तुम ये नहीं कर सकते।
क्यों? इसलिए हुमैन के इसका पहले ही एक नाम है,
जिब्रील ने बड़े ठंडे अंदाज में उसके सवाल का जवाब दिया।
तुम्हें इसका नाम पता है?
नहीं, मुझे इसका नाम नहीं पता।
मम्मी इसका नाम नहीं जानती,
नया को नाम नहीं पता,
तुम्हें भी नहीं पता।
ओ, पूरी दुनिया में किसी को इसका नाम ही नहीं पता।
और तुम,
उसने फौरन जिब्रील की तरफ मुड़के कहा,
और तुम क्या नहीं चाहते इसका कोई नाम हो?
वो गड़बड़ा गया।
मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने खुद सुना है।
उसने अपनी मोटी मोटी गोल गोल आंखें घुमाई। जिब्रेल ने फौरी तौर पर अपना चेहरा किताब के पीछे छुपाने में ही आफियत समझी। वो इस छोटे भाई को तो तभी चुप नहीं करवा सका था जब उसे बोलना नहीं आता था, अब वो कैसे चुप करवाता। इमामा ने इस बार मुदाखलत करनी जरूरी समझी।
इसके पेरेंट्स को पता होगा। पेरेंट्स? ओ माय गॉड, फिर ये उनके पास क्यों नहीं है? इसका और कोई बहन भाई नहीं है?
नहीं, इसका कोई नहीं है।
ओके, तब तो मैं इसका नाम रख सकता हूं।
गुफ्तगू जहां से शुरू हुई थी घूम फिर के वहीं आ गई। हुमैन अपनी कोई बात भूलता नहीं था, ये उसके मां बाप की बदकिस्मती थी। ओके बाबा, तुम इसका नाम रख लो।
मम्मी? क्या ये हमारे साथ रहेगी?
नहीं।
क्यों?
हुमैन एकदम चीखा। उमामा ने सर पकड़ लिया। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है हुमैन कि तुम्हारे पास सवाल खत्म हो जाए, वक्ती तौर पर रोक के जाए। जब तुम्हारे बाबा आएंगे ना, उनसे पूछना।
मम्मी, अब क्या है, हम इसको एडॉप्ट कर सकते हैं?
नहीं, ये नहीं हो सकता।
तुम इसे एडॉप्ट क्यों करना चाहते हो?
जिब्रेल जैसे हॉल सल गया था।
क्योंकि मुझे एक बेबी चाहिए।
जिब्रेल जैसे गश खाकर गिर गया। इमामत दम बखुद अपने इस बच्चे की शक्ल देख रही थी जो अभी 4 साल का भी पूरा नहीं था, जबकि लाउंज में आते हुए सिकंदर उस्मान अपनी हंसी पर काबू नहीं रख सके। हुमैन ने सिकंदर उस्मान को अंदर आते और हंसते हुए देख लिया। वो अपनी जगह से उठा, जाकर उनकी टांगों से लिपटा और ज्यादा शेर होकर अपना मुतालबा पेश किया।
मेरी जान, एक दिन आएगा जब बेबी आपके पास होगा।
एक दिन? एक दिन क्यों, आज क्यों नहीं?
उसने जिद की। सिकंदर उस्मान ने जमीन पर बैठी खिलौनों से खेलती उस चुन्नी को देखा। जितना तरहम और एहसास जुर्म सालार सिकंदर के दिल में चुन्नी के लिए था, उतना ही सिकंदर उस्मान के दिल में भी उस बच्ची के लिए था। वो जैसे इन दोनों का मुश्तरका एहसास जुर्म थी।
बेटा, इसे वापस जाना है, वो आपकी बेबी नहीं हो सकती।
इसे कहां जाना है?
सिकंदर उस्मान जैसे हक्का बक्का अंदाज में उसको देखने लगे।
अपनी फैमिली के पास?
वो उसे यतीम खाने के बारे में बताना नहीं चाहते थे, ना चुन्नी के हवाले से मजीद सवालों का पिंडोरास बॉक्स खोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था उनका सवाल इस सूरत हाल में गलत हो गया।
लेकिन मम्मी ने कहा था ऐसी कोई फैमिली नहीं।
सिकंदर उस्मान ने इमामा को देखा और इमामा ने सर पकड़कर उन्हें,
आपके बाबा ना इसको किसी नर्सरी में दाखिल करवाना चाहते हैं। ये हमारे साथ क्यों नहीं रह सकती? हमारा हाउस इतना बड़ा है।
उसने हाथ फैलाकर इतना को कुछ ज्यादा ही जोर दे दिया। सवाल बेसाख्ता था और जवाब भी सीमित था। बच्चे बाज दफा वो हल चुटकी बजाते पेश कर देते हैं जिनसे बड़े आंखें चुराते फिर रहे होते हैं। हुमैन का ये हल सालार सिकंदर ने भी सुना। वो उसी वक्त चंद यतीम खानों का मालूमाती मटीरियल उठाए लाउंज में दाखिल हो रहा था, लेकिन उस वक्त हुमैन का यह हल उन सबको हुमैन की बचकाना जिद और फैंटेसी से ज्यादा कुछ नहीं लगा।
देखो, ये हमारा घर नहीं, आपके दादा अबू का घर है।
आपके बाबा सही कह रहे हैं हुमैन, हमारे पास घर नहीं है ना। तो ये हमारे साथ कंशासा में रह सकती है?
लेकिन वो भी हमारा घर नहीं है।
हाँ, हम उसे भी बहुत जल्द छोड़ देंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 साल में।
सालार और इमामा बेहद संजीदगी से उसके साथ यूं बात कर रहे थे जैसे वो किसी बड़े आदमी से कोई अहम बात कर रहे हों। हुमैन अभी सोच में डूबा हुआ था, वो जैसे चुन्नी के लिए घर की तलाश में था।
पापा? हमारे पास अपना घर क्यों नहीं है?
हाँ, हमारा अपना घर होगा बेटा।
कब?
बहुत जल्द होगा बेटा।
इमामा चाय बनाकर सालार सिकंदर को पेश कर रही थी।
मैं तुम्हें कितनी मर्तबा कहता था, फजूल खर्चियां मत करो, वक्त पर एक घर बना लो जैसे तुम्हारे सारे भाइयों ने बनाया।
सिकंदर उस्मान को इस मौजूए गुफ्तगु से वो प्लॉट और वो अंगूठी याद आ गई और वो बोल दिए, वो प्लॉट इस वक्त होता ना तो 4-5 करोड़ का होता, इस रिंग की इस वक्त की मार्केट प्राइस से भी डबल। सिकंदर उस्मान ने रवानी से कहा। अपने लिए चाय डालते इमामा एक लम्हे के लिए ठटकी।
किस रिंग की बाबा?
जो रिंग तुमने पहनी हुई है। सिकंदर उस्मान ने चाय का घूंट लेते हुए कहा और सालार को गलती का एहसास हुआ। उसे सिकंदर को इस मौजू पर आने से पहले ही मौजू बदल देना चाहिए था, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। इमामा ने बेयकीनी से हाथ में पहनी अंगूठी को देखा।
ये प्लॉट बेचकर आई है?
हाँ, 1,37,00,000 की। जरा सोचो, 10-11 साल पहले वो प्लॉट ना बिकता तो आज वो इस्लामाबाद में जिस जगह पे है ना, इसे 4-5 गुना कीमत हो चुकी थी। रिंग तो इतनी कीमती नहीं हो सकती ना वक्त के साथ साथ। सिकंदर उस्मान ने ना इमामा के तासुरात पर गौर किया ना सालार के। वो चाय पीते हुए, स्नैक्स खाते हुए बड़े इत्मीनान से कहते चले गए। इमामा साकित और दम बखुद सालार को देख रही थी और वो उसे नजरें चुराए चाय पीने में मसरूफ। इस वक्त वो यही कर सकता था। कमरे में यकदम छा जाने वाली खामोशी से सिकंदर उस्मान को लगा कुछ ठीक नहीं है। चाय का आखिरी घूंट लेते हुए वो रुके। उन्होंने साकित बैठी इमामा को देखा जो सालार को घूर रही थी और फिर सेकंड के 1,000वें हिस्से में उन्हें इस खामोशी की वजह समझ आ गई। सालार, इसे अब भी नहीं पता? उन्होंने बेयकीनी से अपने बेटे से पूछा।
अब पता चल गया।
सिकंदर उस्मान की समझ में नहीं आया वो फौरी तौर पर इस इंकशाफ के बाद किस रद्द अमल का इजहार करते जो एक राज को गैर इरादी तौर पर अफशा करने पर उनकी शर्मिंदगी को छुपा लेता। इमामा ने अपने हाथ में पहनी उस अंगूठी को देखा, फिर सिकंदर उस्मान को, फिर सालार को। वो अगर कहता था वो अनमोल थी तो गलत नहीं कहता था। उसकी जिंदगी में बहुत सारे लम्हे आए जब उसका दिल बस सालार के गले लग जाने को चाहता, किसी लफ्ज किसी और इजहार के बगैर एहसान मंदी और तशक्कुर के लिए दुनिया में मौजूद सारे लफ्ज कभी कभी इस जज्बे और एहसास को किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए छोटे पड़ जाते हैं जो इंसान के अंदर से किसी दूसरे के लिए किसी चश्मे की तरह उमड़ता है। इसका दिल भी इस वक्त सालार से सिर्फ लिपट जाने को चाहा, बच्चों की तरह। वो जिंदगी में कितनी बार इसे इस तरह गूंगा करता रहेगा। उस रात सालार इमामा के हाथ में उस रिंग को ना पाकर पूछे बगैर नहीं रह सका। तुमने रिंग उतार दी? मैं बेवकूफ नहीं हूं कि इतनी कीमती रिंग हर वक्त पहने फिरूं। तुम्हें मुझे बताना चाहिए थी इसकी कीमत।
सिर्फ इसी खदशे से नहीं बताया था। देख लो, मेरा अंदाजा ठीक था। तुम बाकी चीजों की तरह इसे भी लॉकर में रख दोगी, है ना?
सालार नाखुश सा हो गया। तो और क्या करूं, यहां रखूं? साथ लिए फिर ना बेवकूफी है, गुम हो जाए तो? मुझे पहले भी इसके गुम होने का इतना सदमा हुआ था और अब तो हार्ट अटैक ही हो जाए मुझे जो 1 करोड़ से भी महंगी अंगूठी में गुम कर दूं।
1 करोड़ नहीं, 2.25 करोड़।
क्या?
इसकी अभी की वैल्यू बता रहा हूं।
इसीलिए तो नहीं पहन रही, बेवकूफी थी वैसे ये।
क्या?
एक प्लॉट बेचकर अंगूठी खरीदना और वो भी इतनी महंगी। मैं तुम्हारी जगह होती ना कभी ना खरीदती।
इसीलिए तुम मेरी जगह नहीं हो इमामा मैडम।
वो प्लॉट होता तो आज उसे बेचकर घर बना चुके होते हम।
तुम्हारे ख्वाबों का 1 करोड़ में फैला हुआ घर 2 करोड़ में बन जाता।
वो अब उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कुछ याद दिला रहा था और इमामा को स्क्रैप बुक याद आई, अपने मुमकिना घर की ढेरों ड्राइंग्स याद आई। अच्छा किया मुझे याद दिला दिया, मैं कल ही वो स्क्रैप बुक निकालती हूं, मुद्दत हो गई उसे देखे। इसमें कुछ और भी ऐड करूंगी। अभी मजीद कुछ ऐड करोगी? सालार को अमेरिका में खरीदे और फिर बेच दिए जाने वाले उस घर का ख्याल आया जिसके बारे में उसने इमामा को बताया तक नहीं था।
तुम्हें एक चीज दिखाऊं?
सालार ने अपने सामने पड़ा लैपटॉप खोला, उसमें तस्वीरों वाले हिस्से में जाकर उस घर की तस्वीरें ढूंढने लगा। ये क्या?
एक घर, एक झील, उसके गिर्द फैला लॉन।
वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। किसका घर है? मुझे क्यों दिखा रहे हो?
तुमने पहले कभी ये तस्वीरें देखी?
नहीं।
क्यों?
जब हुमैन पैदा हुआ था और मैं तुम्हारे पास अमेरिका से आया था तो तुमने मुझे बताया था कि उस रात तुमने ख्वाब में एक घर देखा था। क्या वो घर ऐसा था? तुम्हें वो ख्वाब याद है ना?
हाँ याद है, लेकिन वो घर ऐसा नहीं था, वो झील भी ऐसी नहीं थी। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो, ये किसका घर है?
तुम्हारे लिए खरीदा था।
इमामा को जैसे झटका लगा। क्या मतलब, मेरे लिए?
तुम्हारे लिए मॉर्गेज किया था अमेरिका में। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर, लेकिन
लेकिन
फिर मैंने इसे बेच दिया कॉन्गो दोबारा आने से पहले। सूद से मैं दुनिया में तो घर ले सकता था, जन्नत में नहीं ले सकता था।
तुम ले भी लेते ना तो भी मैं उस घर में ना जाती। सिर्फ एक घर ही की फरमाइश की है तुमसे पूरी जिंदगी में, वो भी हराम के पैसे से बना कर देते।
मैं तुम्हारे ख्वाबों का घर बना कर देना चाहता था, एकड़ों पर फैला, झील के किनारे, समर हाउस, गजीबो। अपने बुढ़ापे तक पहुंचने से पहले पहले।
तुम वाकई बेवकूफ हो। मेरे ख्वाबों के घर की ईंटें हराम के पैसे से रखी जाएं, ये ख्वाहिश नहीं की थी मैंने। और एकड़ों का घर तुमसे कहा था, लेकिन दुआ तो अल्लाह से करती हूं ना। तुमसे एक बार भी नहीं कहा कि इतना कमाओ या इसी साल घर खड़ा करके दो। इतने सालों में एक बार भी तुमसे जिद की कि इस साल जरूर जरूर लेकर दो मुझे वो घर, कभी याद भी नहीं करवाया। फिर क्यों इतनी जल्दी थी तुम्हें इस घर के लिए कि तुम्हें मॉर्गेज करना पड़ा?
तुमने मुझे कभी नहीं कहा, मुझे रिमाइंडर नहीं दिए, लेकिन मुझे तो पता था ना कि तुम्हारी ख्वाहिश है और मैं चाहता था तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करूं। तुमने बस ये एक ही चीज तो मांगी थी मेरे से।
तुम ख्वाब देख रहे हो सूद से पाक एक इस्लामी मालियाती निजाम का, जिसे दुनिया में राइज कर सको, और मैं ख्वाब देखती हूं एक एकड़ों पर फैले घर का, हलाल के पैसे से बने हुए घर का। ख्वाब तुम्हारा भी अल्लाह ही पूरा कर सकता है और मेरा भी, इसलिए इसे अल्लाह पर छोड़ देते हैं। वैसे भी मैंने सोचा है वो अंगूठी बेचकर उससे कोई प्लॉट तो लेकर रख ही सकती हूं मैं।
तुम वो रिंग बेच दोगी?
नहीं, तुम समझते हो मैं उसे बेच सकती हूं?
हां, तुम्हारा कोई पता भी नहीं है। तुम्हें पता है?
कुछ नहीं। तुम्हें पता है मैं वो रिंग नहीं बेच सकती। दुनिया में सिर्फ एक ही मर्द है जो मेरे लिए ऐसी अंगूठी खरीद सकता है।
अब तुम रोना मत शुरू हो जाना। अच्छा अच्छा मेरी एक बात मानो।
क्या?
उसे वापस पहन लो।
गुम हो जाएगी, मैं और ले दूंगा। तुम्हारे पास अब बेचने के लिए कुछ नहीं। अच्छा,
तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, बाहर पड़े मैट्रेस पर सोया हुमैन जाग गया। वो नींद ही नींद में कुछ बुड़बुड़ा रहा था।
अब ये क्या कह रहा है? शायद तसल्ली नहीं हुई ना तमाम दिन इसकी, कोई बात होगी करने वाली जो इस वक्त याद आ गई होगी।
इमामा ने इसे दोबारा लिटाकर थपकना शुरू किया और उसके बराबर में अंगूठा मुंह में डाले लेटी हुई चुन्नी को देखा जो गहरी नींद में थी।
सालार,
इसके बारे में जो भी तय करना है जल्द करो। हुमैन जिस तरह इससे अटैच हो रहा है, मैं नहीं चाहती कुछ और वक्त यहां रहने के बाद ये यहां से जाए तो वो भी अपसेट हो। सब तय कर लो, इसे कहां छोड़कर आना है तो इसे छोड़ आते हैं। दो चार इदारे मुझे मुनासिब लग रहे हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन तो ले आया हूं, सुबह विजिट करते हैं।
ये काम जितना वो आसान समझ रहे थे उतना आसान साबित नहीं हुआ। अगले दिन वो इस बच्ची को लेकर इन चारों इदारों में गए जहां वो उसे रखना चाहते थे। दो इदारों ने मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बगैर इस बच्ची को फौरी तौर पर अपनी तहवील में लेने से इनकार किया। जिन दो इदारों ने इस बच्ची को वक्ती तौर पर लेने पर आमादगी जाहिर की, वहां का माहौल देखकर वो दोनों खुश नहीं हुए। शाम को वो फिर चुन्नी के साथ वापस घर पहुंच चुके थे और हुमैन की बातचीत चुन्नी को देखकर एक बार फिर खिल गई। सुबह भी वो बड़ी मुश्किल से चुन्नी को रुखसत करने पर तैयार हुआ था और अब चुन्नी की वापस आमद इस घर में उसके लिए एक बिग न्यूज थी। चुन्नी भी उसे देखकर इसी तरह निहाल हुई थी। उस पर भी हुमैन का सामना करने पर वही असर हुआ जो हुमैन पर हुआ था। अगले चंद दिन सालार ने चुन्नी की गार्जियनशिप के हवाले से कानूनी कार्रवाई करने और चुन्नी की पैदाइश और पैदाइश से मुतालिका बाकी कागजात पूरे करने की कोशिश की और जब दो तीन दिनों में वो इन कामों में फंसा रहा तो हुमैन ने चुन्नी के बारे में यह भी दरियाफ्त कर लिया था कि वो गूंगी थी, کیونکہ ان 3-4 دنوں میں وہ بالکل خاموش رہی، صرف ضرورتاً زبان سے آوازیں نکالتی جو بڑی محدود ہوتی۔ یہ چنی کے بارے میں خوفناک انکشاف تھا جس نے امامہ اور سالار دونوں کو ہلا دیا۔ گونگی؟
آئی نو، یہ گونگی ہے، وہ پورا یقین ہے۔
امامہ کو بڑے یقین کے ساتھ وہ سب سے اہم اطلاع دے رہا تھا جو کہ بڑے دنوں سے وہ آبزرو کر رہا تھا۔
نہیں لیکن یہ سن تو رہی ہے۔ ممی امپورٹنٹ نہیں ہے، دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از یہ بول نہیں سکتی ہے۔
سب سے اہم بات سننا ہے بیٹا، امامہ نے بڑے غلط موقع پر بیٹے کو نصیحت کی۔
آئی ڈونٹ تھنک سو، یہاں بہت ساری چیزیں جو سن سکتے ہیں لیکن ویری فیو ہیں جو بول سکتے ہیں۔ دیکھے نا یہ ڈال جو چنی نے پکڑی ہے، یہ بولتی تو نہیں، اور وہ لان میں جو ٹری ہے وہ بھی۔
اچھا بس ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی ہوں۔ چنی کے بارے میں ہمین کا یہ مشاہدہ اس وقت امامہ کو احمقانہ لگا۔ اس کا خیال تھا وہ بچی نئے ماحول میں آنے کی وجہ سے بھی ایڈجسٹ نہیں ہوئی، اس لیے بول نہیں پا رہی، لیکن اسے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ جب آپ کسی کی نویں اور انچاہی اولاد ہوں اور آپ کے گھر بھوک اور بیماری سے لے کر ہر وہ مسئلہ موجود ہو جو زمین پر کسی انسان کی زندگی جہنم بنا سکتا ہو، اور پھر آپ رشتہ داروں پر انحصار کرتے ہوں جہاں آپ کی زندگی کا واحد مصرف ماہانہ آنے والی رقم ہو، اور اس کے علاوہ کسی کو آپ سے کوئی توقع نہ ہو، آپ کی ضرورت نہ ہو، تو دیکھنا اور بول پانا بہت بڑی جدوجہد بن جاتا ہے، اور یہ جدوجہد انسان بچپن سے خود نہیں کر سکتا۔ چنی کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس نے کسی کی طرف سے انگلی پکڑ کر چلانے کی کوشش نہ کرنے کے باوجود اپنے نحیف وجود کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنا سیکھا تھا۔ بول پانا ایک دوسری جدوجہد تھی جو اسے اس گھر میں کرنی تھی۔ وہ گونگی نہیں تھی لیکن اس گھر میں آنے سے پہلے اس نے کوئی لفظ ادا بھی نہیں کیا تھا۔ 3.5 سال کا بچہ اپنے ایک ساتھی بچے کو کسی بڑے کے نسبت زیادہ آسانی سے سمجھ بوجھ رہا تھا۔ چنی کے نصیب میں کسی ادارے میں پرورش پانا نہیں لکھا تھا، اس کے نصیب میں سالار سکندر کے گھر میں ہی پلنا بڑھنا لکھا تھا۔ 2 دن کے بعد ان لوگوں کو واپس کانگو جانا تھا۔ فوری طور پر چاہنے کے باوجود بھی وہ چنی کو کسی ہاسپٹل یا فاسٹر ہوم میں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ اس دوران چنی کو شدید نمونیا ہو گیا تھا، اور اگر خدا نہ خواستہ بچی کی نگہداشت صحیح نہ ہوتی اور وہ مر جاتی تو وہ دونوں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتے۔ سالار اور امامہ نے یہ فیصلہ کیا کہ امامہ بچوں کے ساتھ تب تک وہیں رہے گی جب تک چنی کی حالت سنبھل نہیں جاتی۔ سالار واپس چلا گیا، امامہ 2 ہفتے اور پاکستان میں رہی۔ چنی کی حالت سنبھل گئی مگر اس دوران وہ بچوں کے ساتھ اور خاص طور پر ہمین کے ساتھ جس طرح اٹیچ ہو گئی، وہ ان سے الگ ہونے پہ تیار ہی نہیں تھی۔ سالار ان لوگوں کو واپس لے جانے کے لیے آیا اور ہمین کو بتائے بغیر دوبارہ چنی کو ایک ادارے میں چھوڑنے گیا۔ وہ دونوں اسے لپٹ کر چیخیں مار کر رونے لگے۔ وہ اس کے علاوہ کسی اور کی گود میں جانے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ زبردستی تھما کر باہر نکلتا اور اس کی چیخوں کی آواز سن کر ایک عجیب سی کیفیت میں واپس چلا آتا۔ اس کی گود میں آتے ہی وہ چپ ہو جاتی، یوں جیسے وہ واقعی اپنے باپ کی گود میں ہو۔ وہ جبرائیل کو قرآن پاک خود حفظ کروا رہا تھا، اور پاکستان سے چلے جانے کے بعد 2 ہفتوں تک وہ روز اسکائپ پر جبرائیل کو پڑھاتا، پھر بچوں اور امامہ سے بات کرتا تو چنی اسی ماحول کا حصہ ہوتی۔ سالار کو اسکرین پر نمودار ہوتے دیکھ کر خوشی سے چیخیں مارتی، اون آ کرتی۔ اس نے اپنی زندگی کا پہلا لفظ سالار کے پاکستان آنے پر اسے دیکھ کر باقی بچوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے ادا کیا تھا، بابا۔ سالار کی طرف بھاگتے ہوئے بولتی جا رہی تھی اور اس بات کو سب سے پہلے ہمین نے نوٹس کیا۔
او مائی گاڈ، شی کین ٹاک۔
سالار کی طرف بھاگتے ہوئے اس کے پیروں کو بریک لگی تھی۔ وہ اپنی موٹی آنکھیں گول گول گھماتا چنی کو دیکھ رہا تھا۔ سالار انایا کو اٹھائے ہوئے تھا اور چنی اس کی ٹانگوں سے لپٹی بابا بابا بولتے جا رہی تھی۔ سالار سر جھکائے اسے دیکھ رہا تھا، چمکتی آنکھوں کے ساتھ एलर्जी के मुंदमिल होते हुए निशानात वाला चेहरा, सर पर निकले हुए स्याह बालों की तय और सेहतमंद चेहरा, ये वो बच्ची नहीं थी जिसे एक महीने पहले वो मुर्गियों की गंदगी खाते उठाकर लाया था। उसकी समझ में ये बात आ गई कि कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, नसीब के होते हैं। सालार सिकंदर उसका खानदान नसीब से चुन्नी को मिला था। सालार ने अनाया को नीचे उतारा और अपने पैरों से लिपटी चुन्नी को उठाया। वो पहला लम्हा था जब सालार को अंदाजा हुआ चुन्नी से अलग होना दिक्कत तलब काम है। वो कब कैसे उनके घर और जिंदगियों का हिस्सा बन गई उनमें से किसी को एहसास भी नहीं हुआ, सिवाय हुमैन के, जो दिन में तकरीबन 300 बार ये ऐलान करता था कि दैट ही इज फाइनली हैज अ बेबी सिस्टर, अब उसकी एक छोटी बहन आ गई है। चुन्नी के स्टेटस में यह तब्दीली जिब्राइल की कोशिशों से मुमकिन हुई थी, जिसने कई दिन हुमैन के साथ सर खपाने पर इसे इस बात पर तैयार कर लिया था कि वो चुन्नी को अडॉप्ट करके अपनी औलाद बनाने की बजाय उसे अपनी छोटी बहन बना सकता था, बेबी सिस्टर। और अब हुमैन इस बेबी सिस्टर को किसी दारुल अमान छोड़ता सालार के लिए अजीब सा काम बन रहा था। वो वापस जाने से पहले इमामा के साथ बैठकर चुन्नी के लिए हर इम्कान को जेरे गौर लाता रहा, यहां तक कि इमामा ने कह दिया, सालार तुम इसे अडॉप्ट करना चाहते हो? हाँ, लेकिन ये काम तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। एडॉप्ट जो भी करे, पालना तो तुम्हें है, तुम पाल सकते हो? पहले कौन पाल रहा है? अगर इसके नसीब में जिंदगी थी तो इसकी जिंदगी रही, इसके नसीब में हमारे घर में ही परवरिश पाना लिखा है तो हम कैसे रोक सकते हैं? शायद इसमें इसकी और हमारी कोई बेहतरी हो। चुन्नी को एडॉप्ट करते हुए सालार सिकंदर ने उसको अपनी वल्दियत दी। इस बच्ची को एडॉप्ट करते हुए सालार सिकंदर को अंदाजा नहीं था कि वो बच्ची कफारा नहीं थी, अब वो रईसा सालार थी, अपने नसीब में और अपने से मुंसलिक हर शख्स के नसीब में खुशनसीबी के अलावा और कुछ नहीं थी। वो हुमा थी, खुशनसीबी का वो परिंदा जो जिसके भी सर पर बैठता उसे बादशाह बना देता, और उसे एक बादशाह ही की मलिका बनना था। कांगो का आखिरी साल सालार सिकंदर के लिए कई हवालों से बेहद हंगामा खेज रहा था। वो वर्ल्ड बैंक के साथ अपने आखिरी साल में अपने सारे मामलात को वाइंड अप कर रहा था और उसकी जिंदगी के आधे दिन रात जहाज पर सफर के दौरान गुजर रहे थे, और इन्हीं शबरोज में उसकी मुलाजमत का दौरानिया खत्म होने से चंद हफ्ते पहले उसे वॉशिंगटन बुलाया गया। अमरीकी हुकूमत ने उसे वर्ल्ड बैंक के सदर के ओहदे की पेशकश की। वो ऑफर जो पिछले एक डेढ़ साल से इसे बिलावास्ता की जा रही थी, वो उसे एक सब्ज बाग समझकर नजरअंदाज करता रहा। अब वही एक ठोस हकीकत बनकर सामने आई। इनकार इतना आसान नहीं था जितना सालार समझता था, बहुत बड़ी तरगीब थी। वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था उसे अनाउंस करने में कुछ वक्त था। वर्ल्ड बैंक का पहला कम उम्र तरीन मुसलमान सदर, 42 साल की उम्र में इस ओहदे पर काम करने के लिए कोई भी कुछ भी करने को तैयार हो सकता था। वो तारीख का हिस्सा बन सकता था बेहद आसानी से, सिर्फ एक ओहदे को कबूल कर लेने से। सालार सिकंदर ने जिंदगी के इस मरहले पर एक बार फिर यह एतराफ किया था कि तरगीबात से बचना इतना आसान काम नहीं जितना वो इसे समझने लग गया था। उसने अमरीका में होने वाली मीटिंग और इस ऑफर के बारे में सबसे पहले कांगो वापस आने पर इमामा को बताया था। उसके लहजे में जरूर कुछ ऐसा था जिससे इमामा खटकी थी। तो क्या तुमने क्या कहा? मैंने सोचने के लिए टाइम लिया है। सोचने के लिए टाइम, यानी तुम इनकार करके नहीं आए? इनकार किया था, कबूल नहीं हुआ, मुझे सोचने के लिए कहा गया है। तुम क्या सोच रहे हो सालार? तुम ये ऑफर कबूल करना चाहते हो? करनी चाहिए क्या? नहीं। इतना हतमी और दो टोक जवाब आया कि सालार बोल ही नहीं सका। तुम्हें शायद याद नहीं तुम किस मकसद के लिए काम कर रहे हो और क्या करना चाहते हो। बिल्कुल याद है। फिर उलझन किस बात की है? उलझन नहीं है, सिर्फ ये सोच रहा हूं अभी थोड़ा वक्त चाहिए मुझे अपने प्रोजेक्ट को अमली शक्ल देने के लिए, उसे दुनिया के सामने लाने के लिए। वर्ल्ड बैंक के सदर के तौर पर काम कर लूंगा तो इस प्रोजेक्ट में मुझे मदद मिलेगी, मेरी और इस प्रोजेक्ट की रेपो बढ़ेगी, ढेरों कंपनीज और इन्वेस्टर्स हमारी तरफ आएंगे, बहुत सी जगहों पर मुझे तारुफ करवाना ही नहीं पड़ेगा, बस सिर्फ ये वजह है। देखो, वर्ल्ड बैंक के सदर के तौर पर एक मुसलमान की दायनाती एक एजाज भी तो है। वर्ल्ड बैंक क्या है सालार? जिन है, हवा है, क्या है? कुछ भी नहीं, सूद का काम करने वाली कौमों का एक इज्तमा है और क्या है? क्या एजाज वाली बात है इसमें कि सूद का काम करने वाली इन कौमों की सरबराही एक मुसलमान के पास हो? ये एजाज नहीं, शर्म से डूब मरने वाली बात है किसी मुसलमान के लिए। इमामा ने जैसे उसे आईना नहीं जूता दिखाया था। वो खफा थी, नाखुश थी और बड़े आराम से ये देख रही थी कि ये तरगीब थी जो उसके शौहर के कदमों की जंजीर बन रही थी। जिस प्रोजेक्ट पर तुम काम कर रहे हो ना, उसमें कामयाबी तुम्हें अल्लाह ताला ने देनी है। तुम्हारे इल्म, तुम्हारे तजुर्बे, तुम्हारी काबिलियत और वर्ल्ड बैंक के साथ मुंसलिक रहने वाली शनाख्त ने नहीं। तुम अब 40 में आ चुके हो, बच्चे बड़े हो रहे हैं, वह गुजरता जा रहा है। 5 साल वर्ल्ड बैंक का सदर रहने के बाद तुम 47 साल के हो चुके होगे। फिर उसके बाद तुम एक इस्लामी मालियाती निजाम पर काम करना शुरू करोगे जब तुम अपनी सारी जवानी वर्ल्ड बैंक को दे चुके होगे। तुम यकीनन मजाक कर रहे हो फिर अपने साथ और उन लोगों के साथ जिन्हें तुम एक मुमकिन इनकलाब का हिस्सा बनाए बैठे हो। ये बात करते हुए वो टेबल से उठी और बर्तन समेटने लगी। तुम्हें पता है मामा, मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन एसेट क्या है? तुम्हारी ये जालिमाना साफगोई जो मुझे मेरी औकात में ले आती है। तुम मुझसे इंप्रेस क्यों नहीं हो जाती? मैं उलझा था, टेम्प्ट हुआ था, लेकिन गुमराह नहीं हुआ था। तुम ठीक कह रही हो, वक्त गुजरता जा रहा है, चीजें सोच समझ कर सब्र से करनी चाहिए, लेकिन ताखीर से नहीं। वो जैसे अपना एतराफी बयान दे रहा था। मुझे तुमसे मुतासिर होने और तुम्हारे गुण गाने के लिए बनाया ही नहीं गया सालार, इसके लिए दुनिया पड़ी है। मुझे तुम्हें चैलेंज करके तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारा साथी बनाया गया है। ये काम कोई और नहीं कर सकता। मुझे पता है और मैं इसकी कदर भी करता हूं। वो फैसला जो सालार के लिए बहुत मुश्किल बन रहा था, उसकी बीवी ने बेहद आसान कर दिया। वो आसानी चाहता था, वो मुश्किल की तलबगार थी, क्योंकि हर मुश्किल में आसानी थी। वो ऑफर मीडिया के जरिए से मंजरे आम पर आ गई और वर्ल्ड बैंक के अगले मुमकिना सदर के तौर पर सालार सिकंदर का नाम बहुत सी जगहों पर उछाला जाने लगा। उसके खानदान और हल्का अहबाब के लिए बेहद फखर का बायस बनने वाली खबर थी ये, और सालार के इनकार करने के बावजूद कि उसने ये ओहदा फिलहाल कबूल नहीं किया, कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो इस ऑफर को कबूल करने से इनकार कर सकता था या इसे इनकार करना चाहिए। सिकंदर उस्मान खास तौर पर उसके इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे कि वो इस ऑफर को कबूल करने की बजाय कि अपने कैरियर के स्टेज पर वर्ल्ड बैंक से अलहदगी इख्तियार करके कुछ और करेगा। उन्होंने सालार से उस और की तफसीलात जानने में भी जर्रा बराबर दिलचस्पी नहीं ली थी। उनका फोकस सिर्फ इस बात पर था कि वो वर्ल्ड बैंक का सदर क्यों नहीं बनना चाहता। एक आम बाप की तरह वो भी अपने औलाद के लिए दुनियावी कामयाबी चाहते थे और दुनियावी कामयाबी सामने मौजूद थी, बस हाथ बढ़ाकर थाम लेने की दूर। तुम अकल से पैदल हो और हमेशा पैदल ही रहोगे। उन्होंने सालार के साथ अपनी शदीद खफगी का इजहार मीडिया में उसके ऑफिस की तरफ से आने वाली उस खबर के बाद किया जिसमें उसके ऑफिस ने यह बयान रिलीज किया था कि वो वर्ल्ड बैंक की सदारत का ओहदा संभालने में अपनी जाती वजूहात की बिना पर इंटरेस्टेड नहीं और सिर्फ नायब सदर के तौर पर अफ्रीका में अपनी टर्म को मुकम्मल करना चाहता है। सालार चंद दिन के लिए पाकिस्तान आया था और सिकंदर उस्मान ने जरूरी समझा कि वो एक बार उसे समझाने की कोशिश जरूर करते, और इस कोशिश के दौरान सालार की बताई हुई वजह पर वो सीख पा हो गए। उनकी ये औलाद सारी उम्र अजीबोगरीब बातें और कारनामे करने के लिए ही पैदा हुई थी शायद। तुम वर्ल्ड बैंक का सदर नहीं बनना चाहते, वो ओहदा जो प्लेट में रखकर तुम्हें पेश किया जा रहा है। तुम सूद से पाक एक इस्लामी मालियाती निजाम बनाने का ख्याली पलाव पकाते और खाते रहना चाहते हो। वो तल्ख नहीं होना चाह रहे थे मगर वो तल्ख हो गए थे। अरे तुम्हारी तरह ढेरों लोग ये ख्याली पलाव बना रहे हैं, सारी दुनिया में बनाते चले आ रहे हैं, न पहले कोई कुछ कर सका न आइंदा कुछ होने वाला है। वो सालार सिकंदर को जैसे आईने में अक्स दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे यकीन है
تمہارے اس ذہنی فطور کے پیچھے نہ اس امامہ کا ہاتھ ہوگا، اس سے تو مشورہ کیا ہوگا نا تم نے۔
وہ بیٹے کی رگ رگ کو جانتے تھے اور اس وقت انہیں سالار کے ساتھ امامہ پر بھی غصہ آ رہا تھا۔
اگر ہر نسل اسے خیالی پلاؤ سمجھے گی تو پھر یہ صدیوں تک خیالی پلاؤ ہی رہے گا۔ کسی ایک نسل سے، کسی ایک فرد کو اٹھ کر اس کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا۔ صرف حرام حرام کہہ کر تو ہم اس سودی نظام کے اندر نہیں جی سکتے۔ تم جانتے ہو سالار، یہ موجودہ نظام ہے، اسے ہٹانا کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ یہ افراد کا بنایا ہوا نظام نہیں، ریاستوں کا بنایا ہوا نظام ہے، فلاحی ریاستوں کا۔ بے شک اسلامی نہ ہوں، اپنے اندر اس نظام کو چلا کر کم از کم اپنے معاشرے میں وہ لوگوں کو ایک فلاحی سسٹم دیے ہوئے ہیں۔ تم افراد کو چیلنج کر سکتے ہو، ریاستوں کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ جب تک مسلم ممالک خود ایک مضبوط اقتصادی نظام بنانے کی کوشش نہیں کرتے، جب تک اسلامی فلاحی ریاستوں کی شکل میں سامنے نہیں آتے، کچھ نہیں بدلے گا کہیں بھی۔ دنیا ایسے ہی رہے گی جیسی ہے۔ اقتصادی نظام کیا، ہر نظام صرف طاقتور کا چلے گا؟ کمزور کی عقل میں کسی کو دلچسپی نہیں ہوتی، سکہ طاقتور کا چلتا ہے۔ سالار، یہ سود کی جنگ نہیں، یہ قوموں کی جنگ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، نکمے نااہل، قوم کے لیے نہیں اپنے لیے جیتے ہیں۔ اس وقت اس لیے مار کھا رہے ہیں اور کھاتے رہیں گے جب تک ایسے ہی رہیں گے۔ وہ یہود و نصارہ ہیں، یہ ان کے عروج کی صدی ہے، وہ با علم اور با عمل ہیں، اپنی زندگیاں اپنی قوموں کے لیے قربان کرنے کا عزم اور حوصلہ رکھتے ہیں، اس لیے وہ راج کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے جب تک ان کے اندر یہ جذبہ ہے۔ ہم بدعائیں دے کر کسی قوم کو زوال نہیں دلا سکتے۔ دہشت گرد بن کر کسی قوم کے کچھ لوگ مار سکتے ہیں، عمارتیں تباہ کر سکتے ہیں، خوف پھیلا سکتے ہیں۔ دنیا پہ حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہمیں مغربی اقوام سے بڑھ کر باعمل ہونا پڑے گا۔ یہ مقابلہ بہت مشکل ہے، اور یہ مقابلہ افراد نہیں کرتے، اقوام کرتی ہیں متحد ہو کر۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب تک کسی قوم کے افراد صرف اپنے لیے جی اور مریں گے تب تک کچھ نہیں بدلے گا۔ جب لوگ قوم کے لیے سوچنا شروع کر دیں گے سب کچھ بدل جائے گا۔ جن معاشروں اور قوم کی مثالیں آپ دے رہے ہیں، ان کے ڈھیروں افراد نے اپنی زندگیاں لیبوریٹریز، لائبریریز اور اپنے اسٹڈی ٹیبلز پر صرف اس خواب اور عزم کے ساتھ گزاری تھی کہ جو کام وہ فرد کے طور پر کر رہے ہیں وہ ان کی قوم کے لیے بہتر ثابت ہو۔ ان میں سے کوئی بھی پرسنل گلوری کے لیے زندگی قربان نہیں کر رہا تھا، نہ وہ بانی اور موجد کے طور پر کوئی پہچان بنا کر تاریخ کا حصہ بننا چاہتے تھے۔ وہ بس سٹیٹس کو توڑنا چاہتے تھے، اپنی قوم کے کل کو اپنے آج سے بہتر بنانا چاہتے تھے۔ اور یہی خواہش میری بھی ہے، ایک کوشش اپنی قوم کے لیے مجھے بھی کر لینے دیں۔ مقالے اور کتابیں لکھ لکھ کر اپنا بڑھاپا نہیں گزارنا چاہتا میں پاپا۔ سکندر عثمان بہت دیر تک بول ہی نہیں سکے، اس نے انہی کی باتوں کا حوالہ دے کر ان سے بحث کی تھی، اور ہمیشہ کی طرح وہ بحث جیت گیا تھا۔ ورلڈ بینک کے کتنے صدر گزرے ہیں مجھ سے پہلے، کسی کو نام بھی یاد نہیں ہوگا۔ انہوں نے ورلڈ بینک کے صدر کے طور پر کیا کارنامے کیے ہوں گے، کسی کو بھی یاد نہیں۔ یاد اگر کسی کو ہے تو ورلڈ بینک کا نام یاد ہے، اس کے کسی ہرکارے اور پرزے کا نام کسی کو یاد نہیں رہے گا۔ میں ایسے کسی ہرکارے اور پرزے کے طور پر تاریخ کا قصہ بننا نہیں چاہتا، ایک کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ شاید اس میں کامیاب ہو جاؤں، اور ناکام بھی رہا تو بھی کوئی احساس جرم تو نہیں ہوگا۔ یہ احساس تو نہیں رہے گا کہ میں سود کھانے اور کھلانے والوں کے ساتھ زندگی گزار کر مرا۔ ٹھیک ہے، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، تم نے پہلے کبھی میری بات نہ مانی، نہ مانو گے۔ مجھے بس یہ افسوس رہے گا کہ تم بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے تھے، اس سے کئی گنا زیادہ ترقی حاصل کر سکتے تھے، لیکن یہ تو تمہارا ذہنی فطور ہے نا، اس نے ہمیشہ تمہاری ٹانگ کھینچی، اور اسے تمہارا مسئلہ نہیں، ضرورت سے زیادہ ذہین ہر مسلمان کا مسئلہ ہے۔ تم لوگ ہمیشہ دو انتہاؤں کے درمیان جھولتے رہتے ہو، نہ خود چین سے رہتے ہو، نہ اپنے سے وابستہ لوگوں کو رہنے دیتے ہو۔ سالار مسکرایا، وہ باپ کی مایوسی کو سمجھ سکتا تھا، وہ ان کا خواب توڑ رہا تھا۔ مجھے یقین ہے پاپا، میں جو بھی کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح ہوگا، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ اور یہ یقین تمہیں کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے زندگی میں جب جب مجھے جس بھی فیصلے سے روکا ہے، وہ میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوا ہے۔ آپ کی ممانعت گڈ لک چارم ہے میرے لیے۔ سکندر عثمان ٹھیک کہتے تھے، وہ واقعی ڈھیٹ تھا، مگر اس نے سینس آف ہیومر اپنے باپ سے ہی لیا تھا، جن کا پارا لمحے میں چڑھا اور اترا، اور وہ ہنس پڑے۔ کمینے ہو یار تم، شکریہ۔
سالار ڈاکٹر سپتے علی سے ملاقات کے بعد فرقان کی طرف آیا۔ وہ دونوں تقریباً 8 مہینے کے بعد مل رہے تھے۔ 2 دن بعد اس کی واپسی کی فلائٹ تھی اور فرقان نے بالکل ڈاکٹروں والے انداز میں اسے اس کے فلو کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ یہ تمہیں فلو کب سے ہوا ہے اور کب سے چل رہا ہے یہ؟
یار یہ تو اب 1.5 ماہ سے کچھ مستقل ہی ہو گیا، آتا جاتا رہتا ہے۔ سر درد کے ساتھ شاید کسی چیز کے ساتھ الرجی ہو گئی۔
میڈیسن لے رہے ہو تم؟
وہی اینٹی بایوٹکس ہیں یار، کبھی اثر ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔
تو تم بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کروا لو، کہیں کوئی اور مسئلہ نہ ہو۔ فرقان اس وقت مر کے بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ فلو کا مسئلہ اتنا بڑا ہو سکتا تھا۔ وہ کسی معمولی سی بیماری کو دریافت کرنا چاہتا تھا اور یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اگلے 2 دن لاہور میں اس کے کہنے پر سالار کے کروائے جانے والے ٹیسٹ نے فرقان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی اور اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ رپورٹ سالار کی ہو سکتی ہے۔
کیوں، مزید ٹیسٹ کیوں؟ کوئی ایسا سیریس مسئلہ تو نہیں ہے یار، مجھے فلو ہے، ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔
یہ ضروری ہے سالار۔ فرقان خود میں اتنی ہمت پیدا نہیں کر سکا کہ اسے بتا پاتا کہ اس کے ابتدائی ٹیسٹ کس چیز کی جانب اشارہ کر رہے تھے۔
یار آج بہت کام نپٹانے ہیں۔
کام ہو جاتے ہیں سالار، لیکن صحت پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔
یار صحت بالکل ٹھیک ہے میری، کیا ہوا ہے؟ ایک فلو ہونے پہ یار، ایک تو تم ڈاکٹروں کی طرح نا، مجھے تم لوگ بس ہر چیز میں کچھ نہ کچھ نکال لو، مجھے ہاسپٹل کے چکر لگواؤ۔ ویسے بھی اگلے مہینے مجھے امریکہ جانا ہے، وہاں میڈیکل چیک اپ کروانا ہے مجھے اپنا۔ یار فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہے۔
سب ٹھیک نہیں ہے سالار۔
کیا مطلب؟
میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں 1/2 گھنٹے میں۔ فرقان نے فون پر اسے مزید کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا۔ سالار اس کے انداز پر الجھا، لیکن پھر اس نے سوچا ڈاکٹر ہے، اس کا پروفیشنلزم ہے۔ فرقان نہ صرف 1/2 گھنٹے میں اس کے پاس پہنچ گیا بلکہ اس نے سالار کو اپنی سیٹ کینسل کروانے کے لیے کہہ دیا۔ سالار تم فوری طور پر کہیں نہیں جا رہے، مجھے اس ہفتے میں تمہارے تمام ٹیسٹ کروانے ہیں اور اس کے بعد ہی تم کہیں جا سکتے ہو۔
کیا مسئلہ ہے فرقان؟ تو مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتے؟ کیا چھپا رہے ہو تم؟
کیوں ضرورت ہے مجھے اتنے لمبے چوڑے ٹیسٹ کی؟ سالار اب واقعی کچھ کھٹکا تھا۔ فرقان کو احساس ہو گیا کہ وہ اسے کچھ بتائے بغیر ٹیسٹ پر آمادہ کر ہی نہیں سکتا۔
سالار یار میں صرف یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیومر تو نہیں ہے۔
وہ دنیا کا مشکل ترین جملہ تھا جسے ادا کرنے کے لیے فرقان نے وہ سارے لفظ اکٹھے کیے۔
ٹیومر؟
برین ٹیومر۔ فرقان نے اگلے 2 لفظ جس دقت سے کہے، سالار اس دقت سے انہیں بول بھی نہیں سکا۔ اس کے کان یکدم جیسے سائیں سائیں کرنے لگے۔ وہ بے یقینی سے فرقان کو دیکھتا رہا۔
یہ ٹیسٹ جو تم نے کروائے تھے، یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ؟
وہ خود بھی جملہ پورا نہیں کر پایا۔ زندگی کا خوفناک ترین لمحہ تھا وہ۔ پاکستان کے بہترین آنکولوجسٹ میں سے ایک کے سامنے بیٹھا ہوا تھا وہ، اور فرقان کو اگر ایسی کچھ علامات نظر آئی تھیں تو وہ اس کے اندازے کی غلطی کم از کم نہیں ہو سکتی تھی۔
او مائی گاڈ!
ہومین نے ماما کے ساتھ اسکول کے کوریڈور میں چلتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں خوشی سے او مائی گاڈ کا نعرہ لگایا۔
ممی، آئی ہیو میڈ یو سو فیمس، آپ میری وجہ سے بہت مشہور ہو گئی ہیں۔
اماما پیرنٹ ٹیچر میٹنگ اٹینڈ کرنے اسکول آئی تھی اور ہومین کو پڑھانے والی ہر ٹیچر ہومین کی ممی سے ملنے کی خواہش مند تھی۔ اور اسکول میں ہونے والی وہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ جو کبھی سالار اور اماما کے لیے جبرائیل اور انایا کی وجہ سے فخر کا باعث ہوتی تھی، اب ایک کڑوی گولی تھی۔ اور آج بھی ایسا ہی ہوا۔ ہر ٹیچر کے پاس ہومین کا ایک اعمال نامہ تھا جو وہ اماما کو دکھانا چاہتے تھے۔
آئی ایم سو ڈس اپوائنٹڈ ہومین۔
دیکھو رئیسا بھی تو ہے ساتھ، کسی نے اس کی شکایت نہیں کی۔ آئی ایم سو پراؤڈ آف ہر۔
آئی ڈونٹ تھنک سو۔
ہومین نے ماں کی بات سے متاثر ہوئے بغیر کہنا شروع کیا،
ایوری टीचर सेड दैट शी कांट स्पीक वेल, वो जब सही से बोल ही नहीं सकती तो, और हर टीचर ये कह रही है, फिर आप प्राउड क्यों हैं?
वो सीख लेगी, अभी वो तुमसे छोटी है। इमामा ने रईसा का दिफा करना जरूरी समझा, लेकिन जो हुमैन कह रहा था वो गलत भी नहीं था। रईसा को एडॉप्ट करते हुए इमामा ने कभी नहीं सोचा था कि इस बच्ची की परवरिश से बड़ा चैलेंज उसे लिखना पढ़ना सिखाना था। उसे यह मसला अपने बच्चों के साथ नहीं हुआ था, माँ बाप दोनों की तरफ से उनके लिए कोई भी चीज सीखना केक वॉक थी। रईसा के साथ मामला मुख्तलिफ था, वो चीजों को मुश्किल से पहचानती और उन्हें याद रखने में दिक्कत का शिकार रहती। शुक्र है कि वो ऑटिस्टिक नहीं थी, ना ही से कोई और मेंटल डिसेबिलिटी थी, मगर वो इमामा के लिए एक सबर आजमा काम जरूर थी और रईसा का कम जहीन होना उसके बच्चों से भी छुपा नहीं था। वो उससे बेहद मानूस होने के बावजूद ये समझ गए थे कि वो उन तीनों से डिफरेंट थी। इस बार तुम्हारे बाबा आएंगे ना तो मैं उन्हें वो सारी बातें बता दूंगी जो तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हारे बारे में की हैं।
माई टीचर्स बैक बाइट, वाई डू यू वॉन्ट टू पिक अ बैड हैबिट? उन्होंने मेरी शिकायतें लगाई हैं। शिकायतें लगाना अच्छी बात नहीं होती, आप उनकी ये गंदी आदत क्यों लेना चाहती हैं?
माशाल्लाह से ये हुमैन साहब उमामा को समझा रहे थे। ओके, देखो फिर। इमामा ने उसे धमकाया और फोन पर सालार को कॉल मिलाई। चंद मरतबा बेल जाने के बाद फोन उठा लिया गया, लेकिन उठाने वाला फुरकान था। इमामा हैरान हुई, सालार लाहौर में था और उसने कुछ मसरूफियात की वजह से अपनी सीट आगे करवाई। फुरकान से वो जिस दिन पहली बार लाहौर आकर मिला था उसने इमामा को बताया था। उसने ये भी बताया था कि फुरकान उसके बार बार होने वाले फ्लू की वजह से ब्लड टेस्ट करवाने का कह रहा था। पता नहीं, मुझसे कह रहा था मेरे चेहरे के एक हिस्से पर सूजन नजर आ रही थी। मैंने कहा यार फ्लू हमेशा नाक के इसी हिस्से में होता रहता है, अभी भी शायद इसी वजह से। तुम्हें पता है ना, डॉक्टर आधे पागल होते हैं, साथ ही सिटी स्कैन का कह दिया उसने कि तसल्ली हो जाए। तब सालार ने इमामा से ये कहा था, लेकिन अगले दिन ये भी बताया कि वो टेस्ट करवा आया था। उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट्स के हवाले से उनकी कोई बात नहीं हुई। उसने खुद ही समझ लिया कि चूंकि सालार ने टेस्ट के हवाले से कुछ बताया ही नहीं, इसका मतलब है कि टेस्ट ठीक थे। और अब फुरकान सालार के फोन पर, तो ये लाहौर में उसकी सालार से तीसरी मुलाकात थी इन चंद दिनों में। सालार अभी थोड़ी देर में फोन करता है तुम्हें। फोन आपको कैसे दे दिया उसने? वो तो नहीं देता होता अपना फोन। हाँ यार, वो अस्पताल आए हुए थे ना, तो सालार को मुझसे कुछ काम था इसीलिए वो यहां मिलने आया था मुझे, तो वो जरा वॉशरूम तक गया है तो फोन यहीं छोड़ गया। फुरकान ने रवानी में वो जगह बताई जहां वो थे, फिर उसी रवानी में इमामा से उस जगह होने का जवाब दे दिया, फिर फोन अपने पास होने की तौजीह दे दी और इमामा के लिए अपने बयान को नाकाबिले यकीन कर दिया। वो वॉशरूम जाते हुए अपना फोन कहीं छोड़कर जाने वालों में से नहीं था, वो भी एक पब्लिक प्लेस पर, बेशक वो फुरकान को हॉस्पिटल ही क्यों ना हो। वो खुटक रही थी, लेकिन उसने मजीद सवाल जवाब की बजाय फोन बंद कर दिया। सालार की कॉल का इंतजार करना बेहतर था। सालार MRI करवा रहा था और पिछले चंद दिनों में ऊपर तले होने वाले टेस्ट उन सारे खदशात की तस्दीक कर रहे थे जो फुरकान को हुए थे। उसे ब्रेन ट्यूमर था, लेकिन इसकी नौइयत क्या थी, ये किस स्टेज पर था, इसकी हॉलनाकी क्या थी, ये जानने के लिए अभी मजीद टेस्ट और डॉक्टर्स की राय जरूरी थी। सालार इब्तदाई शॉक की कैफियत से निकल चुका था, मगर उसकी जिंदगी एकदम जैसे रुक गई। वो भाग दौड़ जो वो पिछले कई सालों से करता आ रहा था और जिसमें उसकी जिंदगी के रोजो शब गुजर रहे थे, वो अजीब अंदाज में रुक गई थी। ब्रेन ट्यूमर मोहलिक था, इसकी तस्दीक हो गई, लेकिन वो कितना जानलेवा था और सेहतयाबी के चांसेस क्या थे, इलाज क्या था, कहां हो सकता था, कितनी मुद्दत चाहिए थी, सेहत पे क्या असरात होने थे, और सबसे बड़ा सवाल ये कि उसकी फैमिली पर उसकी इस बीमारी के इंकशाफ का क्या असर होने वाला था। वो बताए या ना बताए, वो छुपाए तो किस तरह। और वो पहला मौका था जब सालार सिकंदर ने पहली बार बैठकर अपनी जिंदगी के 42 सालों के बारे में सोचा था, गुजर जाने वाले 42 सालों के बारे में और बाकी की रह जाने वाली मुद्दत के बारे में, जो एकदम ही चंद सालों में सिमट कर कुछ दिनों का रूप धारने वाली थी। मोहलत का वो उसूल जो कुरान पाक की बुनियाद था, वो सालार सिकंदर की समझ में आ गया था, लेकिन ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि वो कानून अब उसकी अपनी जिंदगी पर लागू होने जा रहा था। अपनी जिंदगी के खात्मे का सोचना, रोजे कयामत पर यकीन रखने के बावजूद उसके रोंगटे खड़े कर रहा था। देख, मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गई है, हर चीज का इलाज मुमकिन हो चुका है, टेस्ट और मेडिसिन आ रही हैं, नाकाबिले इलाज तो अब कोई बीमारी नहीं रही। तुम अभी सिर्फ ये सोचोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम डॉक्टर होकर मुझसे बात कर रहे हो सालार, तुम फौरी तौर पर अमेरिका चले जाओ, बल्कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। वहां बेहतरीन डॉक्टर्स और हॉस्पिटल हैं, हो सकता है वहां इसका इलाज हो जाए, या हो सकता है कोई और हल हो। फुरकान यकदम डॉक्टर से एक दोस्त बन गया। फुरकान, मैं मामा से क्या कहूं, अभी तुम्हें उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक बार अमेरिका से टेस्ट होने दो, देखो वहां के डॉक्टर क्या कहते हैं, यहां के डॉक्टर क्या कहते हैं। फुरकान उसके सवाल को नजरअंदाज कर गया। उसे वो सब बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था जो अपने चंद साथी डॉक्टर से सालार की रिपोर्ट पर मुशावरत के बाद सुन चुका था। देखिए यार, पाकिस्तान में ब्रेन ट्यूमर का इलाज और न्यूरोसर्जरी इतनी एडवांस नहीं है ना जितनी अमेरिका वगैरह में है, इसलिए यहां के डॉक्टर्स की राय मेरे नजदीक इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो छोड़ दे। वो नजरें चुराए कह गया और सालार उसका चेहरा देखता रहा। उसे फुरकान की बेबसी पर अपने से ज्यादा तरस आया। वो उससे कुछ छुपाना भी नहीं चाहता था, मगर वो उसे कुछ बता भी नहीं पा रहा था, और बगैर बताए भी सालार जान गया कि वो क्या बताना चाह रहा था। इसके साथ ही कैसेट नंबर 19 अपने इख्तिताम तक पहुंची। बकिया के लिए कैसेट नंबर 20 लगा लीजिए। शुक्रिया।